वचन। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस अध्ययन माला में इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस द्वारा लिखी गई कुलुसियों नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन माला से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन श्रोता मित्रों का जो हमारे पास पत्र के द्वारा अपने आशीषों को पहुँचाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम के द्वारा अपने आशीषों को हम तक पहुँचाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम बाइबल में से कुलुसियों की पत्री उसके 4 अध्याय से अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु सचमुच में आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज जो कुछ हम सुनते हैं आपका वचन हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो किसी प्रकार की बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव में है या अपने जीवन के लिए अच्छी नौकरी की तलाश में है, जीवन साथी की तलाश में है, आप उनकी भी सहायता करें। आज के अध्ययन के द्वारा हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम अपनी नौकरी के स्थान पर पवित्रता की चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 के अंत में कर्मियों और नियोजकों को प्रबोधन किया गया है। जैसे कि हमने देखा कि आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने आप को प्रभु के निकटता में बनाए रखें। तो आइए आज हम आगे बढ़ेंगे और कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। स्वामियों, पौलुस सेवकों से ही नहीं स्वामियों से भी कुछ कहता है। ठीक ठीक अर्थात ना नीचा ना ऊंचा। स्वामी अपने सेवकों के साथ उचित व्यवहार करें। जी हां, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है, स्वामियों को भी एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी स्वामी और सेवक प्रभु को लेखा देंगे। यहां सुसमाचार व्यवहारिक होता है। आप जो कुछ भी करते हैं आपको प्रभु के लिए करना है, क्योंकि आपको उसकी संतान होने के कारण उसे लेखा अर्थात हिसाब किताब देना होगा। मेरे प्रियो, अगले कुछ पद मसीही आचरण के कुछ और क्षेत्र को प्रस्तुत करते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रार्थना, सार्वजनिक व्यवहार और हमारे वचन। हम कुलुसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना करना और जागृत रहना साथ साथ चलते हैं। ये आध्यात्मिक बातें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें नहमिया के अनुभव का स्मरण होता है। जब बैरी उसके निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे थे तो उसने काम छोड़कर परमेश्वर के सामने रोना आरंभ नहीं कर दिया, कि वह अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसने यह भी नहीं कहा कि हम इसे प्रार्थना विषय बनाएं। जी नहीं, नहमिया ने कहा, 4 अध्याय नहमिया उसके 9 पद में, हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। पौलुस भी यही कहता है, प्रार्थना करो और जागृत रहो। एक बार एक वृद्ध पास्टर ने कहा, जब किसान फसल के लिए प्रार्थना करता है तो उसे हाथ में फावड़ा लेकर आमीन करना चाहिए। अर्थात जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसमें सक्रिय हो जाएं। जी हाँ, हम प्रार्थना के बारे में बहुत व्यर्थ के विचारों को सुनते हैं। मुझे एक पास्टर का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने लिखा था, उन्हें पता चला कि मुझे कोई बीमारी है और ऑपरेशन करना आवश्यक है। मैं घर पर आया और आपके समान निर्णय लिया कि मैं प्रभु पर विश्वास रखूंगा। मैंने तुरंत उन्हें पत्र लिखा, प्रिय भाई, मैंने निश्चय ही प्रभु में भरोसा रखा है, परंतु बस वहीं नहीं रुका। मैं यहाँ के सबसे अच्छे विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने अध्ययन करके विज्ञान का सबसे उत्तम कदम उठाना चाहा और तब मैं ठीक हो गया। मेरे प्रिय भाई, यदि आप बुद्धिमान विश्वासी हैं तो तुरंत अस्पताल लौटें और उनकी समझ में जो सर्वोत्तम है उन्हें करने दें, चाहे वह ऑपरेशन ही क्यों ना हो। आज बहुत सारे लोग विश्वास और विश्वास कहते हैं परंतु वे किसी भी प्रकार के कार्य को करने से डरते हैं। आपको विश्वास के साथ आगे कदम भी बढ़ाना है। आप प्रभु पर भरोसा रखें, वह आपको सुरक्षित रखेगा। मैंने तो ऐसा ही किया। जागृत रहकर प्रार्थना करें, काम करें, यही व्यवहारिक है। तब हम देखते हैं कि धन्यवाद के साथ विश्वास रखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, वह आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। हो सकता है कि उत्तर वह ना हो जिसकी आप आशा कर रहे हैं या आप उम्मीद कर रहे हैं, परंतु वह उत्तर अवश्य ही देगा। यह सांस लेने के समान है। सांस लेते समय प्रार्थना, सांस छोड़ते समय धन्यवाद। कुलुसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। ध्यान दीजिए, साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। पौलुस कहता है हमारे लिए प्रार्थना करना न भूलें। आप पौलुस के लिए तो अब प्रार्थना नहीं कर सकते, परंतु अपने पास्टर के लिए अवश्य ही प्रार्थना कर सकते हैं। आप अन्य प्रचारकों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार कलीसिया में लोग पास्टर और सेवकों को दोष लगाते हैं, परंतु क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? पौलुस कहता है कि हमारे लिए भी प्रार्थना किया करो। आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। इस समय पौलुस कैद में था और वह चाहता था कि वह सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुक्त कर दिया जाए। मैं अपनी सेवा के प्रत्येक पक्ष को एक द्वार मानता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह द्वार खुले रखे। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह द्वार खोलेगा। यह पद मैंने अपनी सेवा के लिए चुना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जी हाँ, उसने मेरे सामने अनेक द्वार खोले हैं और मैं उससे और भी द्वार खोलने की याचना करता हूँ। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिमानी से व्यवहार करो। परमेश्वर की संतान को आज संसार में एक उत्तरदायित्व निभाना है कि आपको बुद्धिमान बनना है, ना कि मूर्ख बनना है। आज हम बहुत अधिक निर्बुद्धि की बातें करते हैं। कुछ लोग प्रभु के लौट आने का समय निश्चित करते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें यह सूचना कहां से और कैसे मिली है। संभवतः उनके पास परमेश्वर का संपर्क है जो हमारे पास नहीं है। विश्वासियों को आज उद्धार से रहित संसार के सामने ऐसी बातें करने का अधिकार नहीं है। हमें यह भी नहीं कहना है कि हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, जबकि हमें उसमें भरोसा नहीं है। हमें संसार के सामने मूर्खता की बातें नहीं करना चाहिए। मुझे एक महिला ने पत्र लिखा। उसने मुझे फटकारा था कि मैं अपने बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गया। उसके विचार में मुझे प्रभु पर भरोसा नहीं था। उसने लिखा, मुझे भी वही बीमारी है और मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती। मैं प्रभु पर भरोसा रखती हूं। वह अंत में मर गई। हम कभी कभी मनुष्य को अवसर देते हैं कि वे हमारा ठड्डा करके कहें, मसीही सेवकों, मसीही धर्म मूर्खता का धर्म है। हमें इन बाहरी मनुष्यों के साथ बुद्धि के साथ व्यवहार करना सीखना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को देखकर परमेश्वर की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। किसी के साथ बल प्रयोग न करें, केवल प्रार्थना करके परमेश्वर से द्वार खोलने का निवेदन करें। मेरे मित्रों, वह निश्चय ही द्वार खोलेगा। काश मैं आपको बता पाता कि मेरे जीवन में, वरन अन्यों के जीवन में भी कितनी बार ऐसा हुआ है। प्रभु को द्वार खोलने दें, इससे पहले कि आप कोई मूर्खता कर बैठें। मैंने अनेक द्वार खटखटाए और अपने आप को मूर्ख बनाया। तब से मैंने सीख लिया कि किसी भी कार्य से पहले बहुत प्रार्थना की आवश्यकता होती है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में किस बात की आवश्यकता है और आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को जान ले कि वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। आप धीरज रखें। इसीलिए पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जानकर प्रार्थना करते रहो। कुलुसियों की पत्री 4:6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कुछ लोगों के विचार में इस पद का अर्थ है, आपकी बातें नमक हो और वे आपको चुभती हुई बातें सुना देंगे। इसका वास्तविक अर्थ है अनुग्रह सहित और सलोना। वचन परमेश्वर की संतान की बातें बुराई को दूर करते हैं। बुराई को बढ़ावा देने की अपेक्षा उसे दूर करें। इसका अर्थ यह भी है कि मसीही विश्वासी उबाने वाला ना हो। हमें जोशीले होना है कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हम देखते हैं कि विश्वासियों की संगति मन भावन होती है। अब हम पौलुस के परिचितों की एक अद्भुत सूची को देखते हैं। ये लोग प्रथम शताब्दी के मनुष्य हैं। वे रोम के नागरिक थे और अन्य जाति रीति रिवाजों के मध्य वास करते थे, परंतु वे परमेश्वर की संतान थे। उनमें से अधिकांश इफिसुस में रहते थे और वहां पर एक सड़क है जो बंदरगाह तक जाती थी। और तब मैं सोचने लगा कि यही वो सड़क है जिसमें पौलुस को आते जाते देखा जाता था। तुखिकुस भी इसी मार्ग पर दिखाई देता था। उनेसिमुस, अरिस्तर्खुस, इफिफ्रास आदि सब यहां चलते फिरते थे। वे सब विश्वासी थे, पहली शताब्दी के परमेश्वर के जन। मेरे प्रियो, रोचक बात तो यह है कि पौलुस न तो कभी रोम गया था और न ही कभी कुलुसे नगर गया था, परंतु वह फिर भी विश्वासियों की सूची देता है जो इन दो नगरों के निवासी थे। इससे स्पष्ट होता है कि पौलुस अनेक लोगों को मसीह की शरण में लाया था और वे उन स्थानों में लौट गए जहां पौलुस स्वयं नहीं गया था। उसकी सेवा अति महान और विस्तृत थी। हम कुलुसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। तुखिकुस इफिसुस की कलीसिया का पास्टर था। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसके 21 पद में आप पढ़ेंगे और तप्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 4 पद, 2 तिमुथियुस के पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद। वह प्रभु में एक अति उत्तम भाई था। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, उसके साथ मैंने उनेसिमुस को भी भेजा है जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है, ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। उनेसिमुस एक व्यक्ति का नाम है। कुलुस्य नगर के निवासी फिलमोन का दास था। वह वहां से भाग गया था, परंतु पौलुस के द्वारा उसने प्रभु यीशु के वचन को सुना और उसे ग्रहण किया। अब पौलुस ने उसे उसके स्वामी के पास पुनः भेज दिया था। पौलुस ने फिलमोन को लिखा कि वह उनेसिमुस उसका प्रिय भाई है। इससे आप देख सकते हैं कि मसीह में संबंध नया रूप ले लेते हैं। स्वामी और दास अब मसीह यीशु में भाई भाई हैं। कुलुसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 10 पद को हम पढ़ते हैं, अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनामास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। ध्यान दीजिए, अरिस्तर्खुस पौलुस के साथ बंदी गृह में था, वह पौलुस का मित्र था। मरकुस यूहन्ना मरकुस बरनाबास का भांजा और मरकुस अति सुसमाचार का लेखक है। आपको स्मरण होगा कि मरकुस पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा में आधे रास्ते से लौट आया था, जिसके कारण पौलुस उसे दूसरी प्रचार यात्रा पर साथ में ले जाना नहीं चाहा। यहां पौलुस से चूक हुई थी और पौलुस ने माना। मरकुस अब बदल गया था। पौलुस कुलुसी की कलीसिया से कहता है कि वे उसे अस्वीकार करने की चूक न करें, उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। 2 तिमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, मरकुस को लेकर चला आ क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तब हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 पद में, और यीशु जो इस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। यीशु जो इस्तुस कहलाता है, संभवतः यहोशु खतना दल का विश्वासी, वह यहूदी था। इससे प्रकट होता है कि कुलुसी की कलीसिया में भी इस्राएली लोग थे, परंतु अधिकांश विश्वासी अन्य जातियों में से थे। ये भाई बहुत ही उदार थे और पौलुस के सहायक भी थे। वे महान प्रचारक का काम भी करते थे। कुलुसियों के पत्री 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। इफ्रास कुलुसे का पास्टर था और वह पौलुस के साथ बंदी गृह में था। अब उसकी सेवा प्रार्थना की सेवा थी। एक प्रचारक लकवे का शिकार है। उसने अद्भुत ही निराशा भरा पत्र लिखा। मैंने उससे उत्तर दिया, मेरे पास आपके लिए एक सेवा है, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना भी एक सेवा है। यदि परमेश्वर ने आपको सक्रिय सेवा से हटा लिया है तो परमेश्वर के सेवकों के लिए आप प्रार्थना करें। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने आपको एक नई सेवा सौंपी है। उसके पास आपके लिए एक भिन्न काम है। कुलुसियों के पत्री 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदिकिया और हियरा पुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। ये तीनों नगर पास पास में थे। लौदिकिया और हियरा पुलिस छह से दस मील की दूरी पर थे और कुलुस्सी के निकट थे। तीनों नगरों में कलीसियाएं थी। कुलुस्सियों के पत्री 4:14 में लिखा है, प्रिय वैद्य लुका और देमास का तुम्हें नमस्कार। प्रिय वैद्य लुका, क्या यह उसका अति मन भावन संबोधन नहीं है? पहले तो पौलुस देमास को सहकर्मी कहता है, परंतु यहाँ केवल देमास कहता है। पौलुस उस पर अधिक विश्वास नहीं कर पा रहा है। आगे चलकर वह पौलुस को त्याग देगा, जिसको हम लोग देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 4:15 में लिखा है, लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। इन नगरों में प्रसिद्ध मंदिर थे, परंतु विश्वासी घरों में आराधना करते थे। मैं मानता हूं कि कलीसिया का आरंभ घरों से हुआ है और वे फिर से घरों में सीमित हो जाएंगी। कुलुस्सियों के पत्री 4:16 में लिखा हुआ है, जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। पौलुस के पत्र कलीसियाओं में पहुंचाए जाते थे कि पढ़े जाएं। लौदीकिया की कलीसिया में भी उसके पत्र पढ़े गए थे, परंतु विद्वानों का विचार है कि यह पत्र इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया पत्र था। पौलुस कह रहा है कि कुलुस्सी की कलीसिया उस पत्र को पढ़े और अपना पत्र लौदीकिया की कलीसिया में भी भिजवा दे। कुलुस्सियों की पत्री 4:17 में हम पढ़ते हैं, और अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। अर्खिपुस जो एक विश्वासी है, इसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। उसके पास वरदान है और पौलुस उसे प्रोत्साहित करता है कि वह उसका सदुपयोग करे। कुलुस्सियों की पत्री 4:18 में, जो कुलुस्सी की पत्री का अंतिम पद है, पौलुस कहता है, मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। पौलुस अपने पत्र लिखवाता था, परंतु गलातिया की कलीसियाओं को उसने अपने हाथ से पत्र लिखा था। यहां वह पत्र पर हस्ताक्षर करता है। पौलुस एक बार फिर कहता है कि मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, मेरे लिए प्रार्थना करना, तुम पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। क्या यह एक महान पत्र नहीं है? पौलुस ने उस कलीसिया को यह पत्र लिखा जहां वह कभी नहीं गया था, परंतु पौलुस वहां के अनेक विश्वासियों को जानता था, क्योंकि वे पौलुस के द्वारा ही मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे। मेरे प्रियो, यह क्या ही आनंद का विषय है कि आपके द्वारा भी कोई मसीह यीशु को जाने और मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। आज हम सबके लिए भी ऐसा मौका है कि हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि प्रत्येक जीवन प्रभु में आए और उस उद्धार का आनंद अपने जीवन में प्रत्येक महसूस कर सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और इसी के साथ साथ कुलुस्सियों की पत्री का अध्ययन ही समाप्त होता है। अब हम अगले अध्ययन में एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, अपने हुए थे पराए, प्यार किसी ने दिखाया दिखाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल
मेरी जिंदगी।